पहला राजा अध्याय 5 पद 1 से लेकर 7 तक। और सोर नगर के हीराम राजा ने अपने दूत सुलेमान के पास भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि वो अभिषक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ है, और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। और सुलेमान ने हीराम के पास यूं कहला भेजा कि तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वो चारों ओर लड़ाइयों में तब तक बजा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। परंतु अब मेरा परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है, और ना तो कोई विरोधी है और ना कुछ विपत्ति देख पड़ती है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाने को ठाना है, अर्थात उस बात के अनुसार जो यहोवा ने मेरे पिता दाऊद से कही थी कि तेरा पुत्र जिसे मैं तेरे स्थान में गद्दी पर बैठाऊंगा वही मेरे नाम का भवन बनवाएगा। इसलिए अब तू मेरे लिए लेबनोन पर से देवदारू काटने की आज्ञा दे, और मेरे दास तेरे दासों के संग रहेंगे, और जो कुछ मजदूरी तू ठहराए वही मैं तुझे तेरे दासों के लिए दूंगा। तुझे मालूम तो है कि सिदोनियों के बराबर लकड़ी काटने का भेद हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता। सुलेमान की ये बातें सुनकर हीराम बहुत आनंदित हुआ और कहा, आज यहोवा धन्य है जिसने दाऊद को उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिए एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। हीराम बहुत आनंदित हुआ कि सुलेमान को अपने पिता के स्थान पर राज्य करने को बुद्धि दी गई है। अध्याय 5 पद 8 और 9। तब हीराम ने सुलेमान के पास यूं कहला भेजा कि जो तूने मेरे पास कहला भेजा है वो मेरी समझ में आ गया। देवदारू और सनोवर की लकड़ी के विषय जो कुछ तू चाहे वही मैं करूंगा। मेरे दास लकड़ी को लबनोन से समुद्र तक पहुंचाएंगे, फिर मैं उनके बेड़े बनवाकर जो स्थान तू मेरे लिए ठहराए वहीं पर समुद्र के मार्ग से उनको पहुंचवा दूंगा। वहां मैं उनको खोलकर डलवा दूंगा और तू उन्हें ले लेना, और तू मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी करना। इसलिए उन्होंने प्रबंध किया जहां वे लेबनोन के जंगल में लकड़ी काटकर बेड़े बनाएंगे सूर और सैदा में। लेबनोन के जंगल देवदारू के जंगलों से भरे हुए थे। इन जंगलों का अधिकांश भाग तुर्क राज्य के समय नष्ट हो गया था, और आज वहां देवदारू के कुंज नाम मात्र रह गए हैं। दुख की बात है कि वो स्थान जो कभी सुंदर जंगल था आज लगभग समाप्त हो चुका है। परंतु उन्होंने देवदारू और सनोवर को काटकर लकड़ी के बेड़े बनवाए और समुद्र में बहाकर जापा शहर बंदरगाह पहुंचा दिया, जो शायद सूर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। जापा से वे उन्हें यरूशलेम को ले जाते थे, जिसकी दूरी करीब 53 किलोमीटर है। इन भारी लटों को इतनी दूर ले जाना कठिन काम था। इन लटों के बदले सुलेमान को हीराम और उसके लोगों के लिए जो जंगल में लकड़ी काट रहे थे भोजन वस्तु की व्यवस्था करनी थी। अध्याय 5 पद 10 और 11। इस प्रकार हीराम सुलेमान की इच्छा के अनुसार उसका देवदारू और सनोवर की लकड़ी देने लगा, और सुलेमान ने हीराम के परिवार के खाने के लिए उसे 20,000 कोर गेहूं, फिर से वही 10 पैमाने 20,000 पैमाने गेहूं। पद 11 में आगे लिखा है, और 20 कोर पेरा हुआ तेल दिया इस प्रकार सुलेमान हीराम को प्रति वर्ष दिया करता था और तेल का नाप करीब 45 से 80 गैलन होता है। ये सब वो उन्हें प्रति वर्ष दिया करता था, या दूसरे शब्दों में उनका जीवन यापन इस प्रकार चलता था। अध्याय 5 पद 12 और 13। और यहोवा ने सुलेमान को अपने वचन के अनुसार बुद्धि दी और हीराम और सुलेमान के बीच मेल बना रहा, वरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांध ली। और राजा सुलेमान ने पूरे इसराइल में से वास्तव में मजदूर पकड़े। अध्याय 5 पद 13 और 14। 30,000 पुरुष बेगार लगाए और उन्हें लबनोन पहाड़ पर पारी पारी करके महीने महीने 10,000 भेज दिया करता था। एक महीने काम करो और दो महीने छुट्टी करो। इसलिए 30,000 लोगों में से 10,000 को हर महीने लेबनोन में लकड़ी काटने में उनकी सहायता करनी होती थी। अध्याय 5 पद 15। और सुलेमान के 70,000 बोझ ढोने वाले, वे लठों को उठाते थे या लठों को लाने ले जाने का काम करते थे। वे लठों को लुढ़का कर ले जाते थे। 70,000 लोग ये काम करें तो आप समझ सकते हैं कि कितना काम होता होगा। और ऊपर 80,000 लोग जंगलों में पेड़ काटा करते थे। इसका अर्थ ये हुआ कि काम करने वाले बहुत बड़ी संख्या में लगाए गए थे। अध्याय 5 पद 16 से लेकर 18 तक। इनको छोड़ सुलेमान के 3,300 मुखिये थे जो काम कराने वालों के ऊपर थे। फिर राजा की आज्ञा से बड़े बड़े अनमोल पत्थर इसलिए खोद कर निकाले गए कि भवन की नेव गड़े हुए पत्थरों में डाली जाए। और सुलेमान के कारीगरों और हीराम के कारीगरों और गबालियों ने उनको गाड़ा और भवन के बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। आज यरूशलेम में हेरोद के दरवाजे के पास एक गुफा है जो दीवार के नीचे से जाती है। उसमें से होकर आप उन खानों में पहुंच सकते हैं जो सुलेमान के समय की है। वहां से यरूशलेम की दीवार बनाने के लिए पत्थर निकाले गए थे। पत्थर की ये खाने अभी वहां है और उन पर छेनी से पत्थर काटने के निशान दिखाई देते हैं। वहां की चट्टाने परतों में है, इसलिए भवन बनाने के लिए बड़ी उपयोगी है। काटने के बाद वे समतल ही रहती है। वे लोग चट्टान में सुराख करते और लकड़ियां डालकर पानी से भर देते थे, जिससे कि लकड़ियों के फूलने से वे चट्टान चटक जाती थी। इस प्रकार वे उन चट्टानों की परतों को निकाल लिया करते थे। सुलेमान की पत्थर की खानों को देखना बड़ा मनोहर होता है। यदि आप कभी वहां जाए तो हेरोदेस के दरवाजे की दाईं ओर दमिश्क दरवाजे के बीच में सुलेमान के पत्थरों की खान अवश्य देखें। वो मन को मोह लेने वाला स्थान है। आज यरूशलेम का ये कानून है कि सब भवन उस यरूशलेम पत्थर से बनाए जाए, चाहे वे सीमेंट के भवन भी बनाए, परंतु उसके सामने वे यरूशलेम पत्थर अवश्य लगाए जो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। सुबह सूर्य के प्रकाश में वे सुनहरे से दिखाई देते हैं, इसलिए यरूशलेम को सुनहरा शहर कहता है, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है और किरणें इन पत्थरों पर पड़ती है, वैसे वैसे वे अधिकाधिक चमकने लगते हैं। ये पत्थर देखने में अति सुंदर होता है। वे पत्थर को इस दशता से काटते और रूप देते थे कि उन्हें चुनाई के लिए मसाले की आवश्यकता नहीं होती थी। वे अपने आप ही एक दूसरे में फंस जाते थे। मैंने मंदिर का कोना देखा जो हेरोदेस के समय में इन अति विशाल पत्थरों से बनाया गया था। कहा जाता है कि सुलेमान के पास इतने विशाल पत्थर थे कि उनमें से कुछ 11 से 13 फुट लंबे थे, परंतु हेरोदेस ने जो पत्थर लगवाए वे 37 फुट लंबे, 5 फुट ऊंचे और 8 फुट मोटे थे, जिसका वजन करीब 80 से 100 टन का था। ये पत्थर इतनी सफाई से काटे जाते थे कि मैंने छुरी लेकर उनके बीच में डालने की कोशिश की, परंतु वो घुसी नहीं। अब आप खुद ही अनुमान लगाएं कि ये पत्थर कैसी दक्षता से तराशा जाता होगा और उसमें कितना समय लगता होगा, क्योंकि सारा काम हाथों से छेनी और हथौड़ी की सहायता से करना होता था। उस समय मशीनें नहीं थी। आज भी आप बूढ़े आदमियों को वहां बैठे पत्थर तराशते हुए देख सकते हैं। ये एक कला है जो आज तक बनी हुई है, क्योंकि उस नगर का ये कानून है कि हर भवन के सामने वाले भाग पर यरूशलेम पत्थर लगाना है। इसलिए पत्थर तराशना एक रोचक कला है जो देखने में मनमोहक है। सुलेमान ने इन्हीं पत्थरों की आज्ञा दी थी।